नमस्ते, मैं आराफ हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, डगलस आर हॉफस्टैडर की गोडेल एशर बाक एन इटर्नल गोल्डन ब्रेड, पहली बार 1979 में प्रकाशित और पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित गणित, संगीत, दृश्य कला, तर्कशास्त्र और मन के दर्शन को जोड़ने वाली असाधारण लोकप्रिय विज्ञान कृति है। यह न तो केवल कर्ट गोडेल की अपूर्णता प्रमेयों की व्याख्या है, न केवल एम सी एशर की चित्रकला या योहान सेबास्टियन बाक की संगीत रचनाओं का अध्ययन। इसका केंद्रीय प्रश्न है कि निर्जीव और नियमबद्ध घटकों से अर्थ, आत्मबोध तथा चेतना जैसी उच्च स्तरीय घटनाएं कैसे उभर सकती है। हॉफस्टैटर का उत्तर स्ट्रेंज रूप यानी ऐसी आत्मसंदर्भी संरचना के विचार के आसपास विकसित होता है। पुस्तक के अध्यायों के बीच अकिलीज और कछुए के चंचल संवाद आते हैं, जिनकी बनावट स्वयं किताब की अवधारणाओं का प्रदर्शन करती है। पहेलियों, औपचारिक प्रणालियों, कंप्यूटर प्रोग्रामों, जैविक उपमाओं और कलात्मक रूपकों के सहारे यह कृति पाठक को यह जांचने के लिए कहती है कि नियम, प्रतीक और अर्थ के बीच संबंध वास्तव में कैसे बनता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, गोडेल का अपूर्णता प्रमेय और प्रमाण से बड़ी सत्य की धारणा। पुस्तक की बौद्धिक धुरी कट गोडेल के अपूर्णता प्रमेय है। सरल रूप में, हॉफस्टैटर दिखाते हैं कि पर्याप्त रूप से शक्तिशाली और सुसंगत औपचारिक प्रणाली अपने भीतर ऐसे कथन निर्मित कर सकती है जो सत्य हो, लेकिन उन्हीं नियमों के सहारे सिद्ध न किए जा सके। यह निष्कर्ष किसी प्रणाली को बेकार नहीं बनाता, बल्कि यह बताता है कि किसी नियम समूह की क्षमता और उसकी सीमा दोनों को समझना जरूरी है। गोडेल की उपलब्धि का निर्णायक उपाय यह था कि गणितीय कथनों और प्रमाणों को संख्याओं के रूप में निरूपित किया गया। इससे एक कथन अप्रत्यक्ष ढंग से अपने ही सिद्ध न हो पाने के बारे में बोल सका। हॉफस्टैटर इस तकनीकी उपलब्धि को केवल गणित का प्रसंग नहीं मानते, वे पूछते हैं कि क्या मन भी अपने ही बारे में प्रतिरूप बनाकर सोचता है। फिर भी पुस्तक का तर्क यह नहीं है कि अपूर्णता प्रमेय सीधे साबित कर देते हैं कि मानव मस्तिष्क मशीन नहीं हो सकता। असली सीख अधिक सावधान है। औपचारिक नियमों से चलने वाली व्यवस्था में भी ऐसे स्तर बन सकते हैं जहां सत्य, व्याख्या और आत्मसंदर्भ साधारण नियम पालन से अधिक जटिल दिखाई देते हैं। इसीलिए पाठक को प्रमाण, सत्य और बाहरी दृष्टिकोण के अंतर को अलग अलग समझना पड़ता है। दूसरा, स्ट्रेंज लूप के माध्यम से आत्मा और चेतना का उद्भव। स्ट्रेंज लूप हॉफस्टैटर का सबसे प्रसिद्ध विचार है। इसका अर्थ किसी साधारण गोल चक्कर से नहीं, बल्कि ऐसे स्तरों के बीच आवागमन से है जिसमें ऊपर चढ़ते हुए व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से फिर उसी स्तर पर पहुंच जाता है जहां से यात्रा शुरू हुई थी। गोडेल के आत्मसंदर्भी कथन एशर की ऐसी सीढ़ियां या हाथों की छवियां जो एक दूसरे को बनाते प्रतीत होते हैं, और बाक की पुनरावर्ती संगीत संरचनाएं इस विचार के अलग रूप है। हॉफस्टैटर इसी ढांचे से आत्मबोध पर विचार करते हैं। न्यूरॉन अपने आप में किसी व्यक्ति, इच्छा या अर्थ को नहीं जानते, पर बहुत बड़ी संख्या में संकेतों, स्मृतियों और प्रतीकात्मक प्रतिरूपों की परस्पर क्रिया से ऐसा संगठन उभर सकता है जो स्वयं को एक मैं के रूप में दर्शाता है। यहां मैं कोई अलग रहस्यमय वस्तु नहीं, बल्कि स्थिर दिखने वाला उच्च स्तरीय पैटर्न है। यह दृष्टि कट्टर सरलीकरण से भी बचाती है। यह कहना पर्याप्त नहीं कि मन केवल परमाणु है, क्योंकि व्यक्ति के निर्णय, भाषा, स्मृति और संबंध उस वर्णन के अलग स्तर पर वास्तविक है। साथ ही यह विचार आत्मा के लिए अलग भौतिक पदार्थ मानने की आवश्यकता को चुनौती देता है। पुस्तक चेतना का अंतिम वैज्ञानिक समाधान नहीं देती, लेकिन वह यह समझने का शक्तिशाली ढांचा देती है कि अर्थहीन सूक्ष्म घटकों से अर्थपूर्ण समग्रता कैसे उत्पन्न हो सकती है। तीसरा, एशर और बाक में पुनरावृत्ति, समरूपता और संरचना का प्रदर्शन शीर्षक के तीन नाम पुस्तक में सजावटी संदर्भ नहीं है। गोडेल, एशर और बाक तीन अलग माध्यमों में एक जैसी गहरी संरचनाओं को देखने के साधन बनते हैं। एशर के चित्र स्थान, दृष्टिकोण और स्तरों के बारे में हमारी सहज धारणाओं को उलट देते हैं। उनकी असंभव इमारतें या परस्पर रचते हाथ दर्शक को यह अनुभव कराते हैं कि स्थानीय रूप से सही दिखने वाली चीजें मिलकर वैश्विक विरोधाभास पैदा कर सकती है। बाक के कैनन और फ्यूग में कोई संगीत विषय दोहराया, पलटा, स्थानांतरित और विभिन्न स्वरों में विकसित होता है। हॉफस्टैटर इन्हें पुनरावृत्ति और रूपांतरण की श्रव्य मिसालों की तरह पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बात केवल पैटर्न का लौटना नहीं, बल्कि उसका बदलते संदर्भ में पहचाना जाना है। इसी को पुस्तक समरूपता की व्यापक समस्या से जोड़ती है। जब हम दो भिन्न वस्तुओं या स्थितियों में एक ही संबंधात्मक ढांचा पहचानते हैं, तभी उपमा और अर्थ संभव होते हैं। उदाहरण के लिए, कागज पर बना चिन्ह और मस्तिष्क में सक्रिय स्मृति भौतिक रूप से अलग है, फिर भी वे किसी साझा अर्थ से जुड़ सकते हैं। इस प्रकार कला और संगीत यहां गणित को आसान बनाने वाले उदाहरण मात्र नहीं है, वे दिखाते हैं कि जटिलता के भीतर नियम, पुनरावृत्ति और रूपांतरण किस प्रकार अनुभव योग्य अर्थ पैदा करते हैं। चौथा, औपचारिक प्रणालियां। प्रतीक और अर्थ के बीच अनिवार्य अंतर। गोडेल, एशर। बाक बार बार इस प्रश्न पर लौटती है कि चिन्हों को नियमों के अनुसार चलाना और उनका अर्थ समझना एक ही बात है या नहीं। औपचारिक प्रणाली में प्रतीक स्पष्ट नियमों के तहत बदले जाते हैं। उसमें यह जांचा जा सकता है कि कोई सूत्र वैध है या नहीं बिना उसके अर्थ पर विचार किए। कंप्यूटर प्रोग्राम भी इसी अर्थ में औपचारिक प्रक्रियाएं हैं। लेकिन हॉफस्टैटर जोड़ देते हैं कि प्रतीक तभी किसी चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं जब किसी व्याख्यात्मक स्तर पर उन्हें अर्थ दिया जाए। यह अर्थ बाहर से थोपे गए मनमाने लेबल तक सीमित नहीं है। जीवित प्राणी के लिए प्रतीक शरीर, स्मृति, परिवेश और क्रिया से जुड़े होते हैं। पुस्तक में नक्शे और भूभाग जैसी उपमाएं इस अंतर को स्पष्ट करती है। एक नक्शा उपयोगी है क्योंकि उसके चिन्ह दुनिया की संरचना से संबंध रखते हैं, पर नक्शा स्वयं भूभाग नहीं होता। यही कारण है कि किसी प्रणाली का निम्न स्तरीय वर्णन और उसका उच्च स्तरीय वर्णन प्रतिस्पर्धी नहीं, पूरक हो सकते हैं। न्यूरॉनों की विद्युत गतिविधि का वर्णन जरूरी है, मगर उससे अपने आप किसी कविता, भाई या निर्णय का अर्थ नहीं खुल जाता। हॉफस्टेटर का लक्ष्य नियमों की शक्ति को नकारना नहीं है। वे दिखाते हैं कि नियमों से बनी प्रणाली में पर्याप्त जटिल संगठन और प्रतिरूपों के कारण अर्थपूर्ण स्तर कैसे उभर सकता है। यह भेद AI, भाषा और संज्ञान पर आज की बहसों में भी प्रासंगिक बना हुआ है। अंत में अकिलीज और कछुए के संवादों में रूप और विषय की एकता पुस्तक की विशिष्ट रचना पद्धति उसके तर्क का हिस्सा है। लगभग हर अध्याय से पहले अकिलीज और कछुए के संवाद है, जो लुईस कैरोल की तर्कपूर्ण विनोदी परंपरा से प्रेरित है। इन संवादों में संवाददाता पहेलियां सुलझाते हैं, विरोधाभासों में उलझते हैं, संगीत और तर्क पर चर्चा करते हैं, या किसी ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां बातचीत स्वयं अपने विषय का उदाहरण बन जाती है। उनका प्रयोजन कठिन अध्यायों के बीच केवल मनोरंजन देना नहीं है। अनेक संवाद बाकी किसी रचना की संरचना से मेल खाते हैं, जैसे कैनन या फ्यू की आवाजों का प्रवेश और पुनरागमन। इस तरह पाठ का रूप भी आत्मसंदर्भ, प्रत्यावर्तन और बहुस्तरीयता को निभाता है। पाठक पहले किसी विचार को नाटकीय या हास्यपूर्ण स्थिति में अनुभव करता है, फिर संबंधित अध्याय में उसका औपचारिक विश्लेषण देखता है। यह क्रम बताता है कि समझ हमेशा परिभाषा पढ़ने से शुरू नहीं होती। कई बार हम किसी संरचना को उसके उदाहरणों, विसंगतियों और रूपांतरणों के माध्यम से पहचानते हैं। हालांकि कुछ पाठकों को यही शैली लंबी या ध्यान भटकाने वाली लग सकती है, विशेषकर जब वे केवल गोडेल के प्रमेय का सीधा परिचय चाहते हो। पर पुस्तक के उद्देश्य के लिए यह शैली अनिवार्य है। वह पाठक को सिर्फ आत्मसंदर्भ के बारे में बताती नहीं, बल्कि उसे ऐसी रचना के भीतर लगती है जो अपने स्तरों और संकेतों के माध्यम से आत्मसंदर्भ का अभ्यास करती है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जिन्हें गणित, कंप्यूटर विज्ञान, संज्ञान विज्ञान, दर्शन, भाषा, संगीत या कला के बीच संबंधों में गंभीर रुचि है। इसे पढ़ने के लिए उन्नत गणितज्ञ होना जरूरी नहीं, लेकिन धैर्य, जिज्ञासा और कठिन तर्कों के साथ समय बिताने की तैयारी जरूरी है। गोडेल के प्रमेयों और औपचारिक प्रणालियों वाले हिस्से चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए इसे तेजी से सार निकालने वाली पुस्तक की तरह पढ़ना उचित नहीं। धीमे पढ़ने पर इसका व्यावहारिक बौद्धिक लाभ यह है कि पाठक प्रमाण और सत्य, नियम और अर्थ, भाग और समग्रता तथा प्रतिरूप और वस्तु के बीच अधिक सटीक भेद करना सीखता है। AI और चेतना पर विचार करते समय भी यह सरल नारों से बचने की आदत बनाती है। समान विषयों की अनेक पुस्तकों में या तो दर्शन अलग रहता है या गणित या कला। हॉफस्टैटर की विशिष्टता यह है कि वे इन क्षेत्रों को एक ही तर्कात्मक और कलात्मक संरचना में पिरोते हैं। बाक की फ्यूग, एशर की दृश्य पहेली और गोडेल का गणितीय आत्मसंदर्भ एक दूसरे के उदाहरण भर नहीं, बल्कि परस्पर रोशनी देने वाले रूप है। पुस्तक के अपने संवाद, शब्द खेल और संरचनात्मक प्रतिध्वनियां भी उसके दावे को साकार करती है। इस कारण यह चेतना का अंतिम उत्तर देने वाली पुस्तक नहीं, बल्कि प्रश्न पूछने की क्षमता को अधिक सूक्ष्म बनाने वाली दीर्घकालिक कृति है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं डगलस आर हॉफस्टैटर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।